ईश्वर का मेमोरेंडम। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे रोने की आवाज सुन लेता हूँ। यह आवाज अंधेरे से गुजरती है, बादलों से होती हुई सितारों की रोशनी में मिलती है और सूर्य की किरण के रास्ते से होकर मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं हर दुखियारे की आवाज को सुनकर दुखी होता हूँ, चाहे वह जाल में फंसे खरगोश की चीख हो या अपनी माँ के घोंसले से गिर गए चिड़िए के बच्चे की आवाज हो, या तालाब में डूबते हुए बच्चे की पुकार हो, या फिर क्रॉस पर अपना खून बहाते हुए मेरे बेटे की आवाज हो। यह जान लो कि मैं तुम्हारी भी आवाज सुनता हूँ। शांति से रहो, शांत रहो। मैं तुम्हारे दुख दूर करूंगा, क्योंकि मैं इसका कारण जानता हूँ और इसका इलाज भी। तुम अपने बचपन के उन सपनों के लिए दुखी हो जो उम्र के साथ कहीं खो गए हैं। तुम अपने आत्म गौरव को लेकर दुखी हो जो असफलता के स्पर्श से धूमिल हो चुका है। तुम अपनी संभावनाओं को लेकर दुखी हो जिन्हें तुम इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि तुमने सुरक्षा की राह चुनी थी। तुम अपनी व्यक्तित्वता के लिए दुखी हो जो भीड़ के पैरों तले कुचल दी गई है। तुम अपनी प्रतिभा के लिए दुखी हो जिसका दुरुपयोग करके तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। तुम अपने आप को हिकारत भरी नजरों से देखते हो और जब तुम पानी में अपनी छवि देखते हो तो तुम डर जाते हो। यह कौन इंसान तुम्हारी तरफ देख रहा है जो इंसानियत के नाम पर कलंक की तरह दिख रहा है? यह कौन है जिसकी आंखें शर्म से झुकी हुई हैं? तुम्हारे व्यवहार की शालीनता कहाँ है? तुम्हारी आकृति की सुंदरता कहाँ है? तुम्हारी गति की चापलता कहाँ है? तुम्हारे मस्तिष्क की स्पष्टता कहाँ है? तुम्हारे शब्दों की प्रतिभा कहाँ है? किसने तुम्हारा यह सामान चुरा लिया? क्या तुम उस चोर को जानते हो? मैं तो जानता हूँ। कभी तुमने अपना सिर अपने पिता के खेत में घास के तकिए पर रखा था और बादलों के गिरजाघर को देखा था और तुमने सोचा था कि बेबीलोन का सारा सोना एक दिन तुम्हारा होगा। कभी तुमने कई किताबें पढ़ी थी और कई कॉपियों में लिखा था और तुम्हें यह पूरा भरोसा था कि तुम में सुलेमान के बराबर या उससे भी अधिक बुद्धि थी। मौसम बदलकर साल बन जाएंगे और एक दिन तुम ईडन के अपने बगीचे में सर्वश्रेष्ठ होगी। क्या तुम्हें याद है कि किसने यह योजनाएं, यह सपने, आशा के यह बीज तुम्हारे भीतर रोपे हैं? तुम नहीं जानते। तुम्हें वह क्षण भी याद नहीं जब तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले थे और मैंने अपना हाथ तुम्हारे नर्म सिर पर रखा था, और जब मैंने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया था तो मैंने तुम्हारे छोटे से कान में एक रहस्य बताया था। क्या तुम्हें वह रहस्य याद है? तुम्हें वह रहस्य याद रह ही नहीं सकता। गुजरते हुए सालों ने तुम्हारी याददाश्त को नष्ट कर दिया है क्योंकि तुमने अपने दिमाग में डर, शंका, तनाव, अपराध बोध और नफरत जैसी भावनाएं भर ली हैं। इस कारण तुम्हारे दिमाग में सुखद यादों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। जहां ये जानवर रहते हों वहां सुखद यादें कैसे रह सकती हैं? रोना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यह क्षण तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। जो समय गुजर चुका है उसे यह मान लो कि तुमने वह समय अपनी माँ के गर्भ में सोकर गुजारा है। जो गुजर चुका वह मर चुका है, मरे हुए को दफना दो। आज के दिन तुम जीवित मृत्यु से वापस लौटोगी। इस दिन एलिशा और एक माँ के पुत्र के प्रसंग की तरह मैं तीन बार तुम्हें छू लूंगा और तुम एक बार फिर जिंदा हो जाओगे। इस दिन एलिशा और सुनेमिन के प्रसंग की तरह मैं अपने मुंह को तुम्हारे मुंह पर, अपनी आंखों को तुम्हारी आंखों पर और अपने हाथों को तुम्हारे हाथों पर रखता हूँ, ताकि एक बार फिर से तुम गर्म हो जाओ। इस दिन जैसे यीशु ने लाजर की कब्र पर किया था, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम बाहर निकलो और मौत की अपनी गुफा से बाहर आकर नए जीवन की शुरुआत करो। यह तुम्हारा जन्मदिन है, यह तुम्हारे जन्म की नई तारीख है। तुम्हारी पहली जिंदगी किसी नाटक की तरह केवल एक रिहर्सल थी। इस बार पर्दा सच में उठ चुका है। इस बार पूरी दुनिया देख रही है और तुम्हारी प्रशंसा में तालियां बजाने का इंतजार कर रही है। इस बार तुम असफल नहीं हो सकती। तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। जिस तरह तितली अपने कवच से मुक्त होकर उड़ती है, तुम भी उड़ सकोगे उतना ऊंचा जितना तुम चाहो। मानव जाति के ततैये या दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले प्राणी तुम्हारी राह नहीं रोक पाएंगे। तुम्हारे मिशन में कोई बाधा ना डाल पाएगा। तुम जीवन की सच्ची समृद्धि की खोज में आगे बढ़ते चले जाओगे। अपने सिर पर मेरे हाथों का स्पर्श अनुभव करो। एक बार फिर उस रहस्य को जान लो जो तुम्हारे पैदा होने पर मैंने तुम्हारे कानों में कहा था और तुम भूल गए। तुम मेरे महानतम चमत्कार हो। तुम विश्व के महानतम चमत्कार हो। यह पहले शब्द थे जो तुमने सुने थे। फिर तुम रोने लगे। सभी रोने लगते हैं। तब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था और इतने सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे तुम्हारा यह अविश्वास दूर हो। तुम किस तरह चमत्कार हो सकते हो जब तुम छोटे छोटे कामों में असफल हो जाते हो। तुम किस तरह चमत्कार हो सकते हो जब तुम्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने का आत्मविश्वास नहीं होता। तुम किस तरह चमत्कार हो सकते हो जब तुम कर्ज में डूबे हुए हो और इस बात पर चिंतित रहते हो कि कल का भोजन कहां से आएगा। बहुत हो चुका। नाली में बहा दूध अब कभी वापस नहीं आ सकता, परंतु मैंने कितने सारे प्रॉफिट, कितने सारे समझदार आदमी, कितने सारे कवि, कितने सारे कलाकार, संगीतकार, कितने सारे वैज्ञानिक, कितने सारे दार्शनिक, संदेशवाहक तुम्हारे पास भेजे, जो तुम्हें दैवीय स्वरूप, तुम्हारी ईश्वरीय संभावनाएं और उपलब्धि के रहस्य बताएं, और बदले में तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस प्रॉफिट की बात को सच कर रहा हूँ जिसने यह घोषणा की थी कि ईश्वर दोबारा अपना हाथ उठाकर अपने लोगों को मुक्ति देगा। मैंने अपना हाथ उठा लिया है। यह दूसरी बार है तुम मेरे अपने हो। यह पूछना बेकार है कि क्या तुम्हें पता नहीं था, क्या तुमने नहीं सुना था, क्या तुम्हें यह शुरुआत से ही बताया नहीं गया, क्या तुमने धरती की नींव से इसे समझाना था, तुमने इसे जाना ना था, तुमने इसे सुना ना था या तुमने इसे समझा ना था। तुम्हें बताया जा चुका है कि दरअसल तुम छुपे हुए देवदूत हो। तुम ईश्वर की तरह ही हो, परंतु इसके बाद भी तुम मूर्ख की भूमिका निभा रहे हो। तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम मेरी अद्भुत रचना हो जिसमें प्रचुर बुद्धि, अनंत संभावनाएं, सुंदर और सराहनीय आकृति और गति जैसे कार्य, ईश्वर जैसी समझ है। तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम इस धरती के नमक हो। तुम्हें पहाड़ हिलाने का रहस्य, असंभव को संभव करने का रहस्य पहले ही बताया जा चुका है। तुमने किसी पर विश्वास नहीं किया। तुमने सुख की राह दिखाने वाले नक्शे को ही जला दिया। तुमने मन की शांति हासिल करने की सारी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। तुमने प्रसिद्धि के पथ पर राह दिखाने वाले कैंडलों को बुझा दिया और फिर तुम लड़खड़ा गए, डर गए, व्यर्थता और आत्मदया के अंधेरे में खो गए और फिर तुम अपने ही बनाए हुए नरक में गिर गए। फिर तुम रोए और अपनी छाती पीट कर अपनी तकदीर को दोष देने लगे कि तुम्हारे साथ भला ऐसा क्यों हुआ। तुमने यह नहीं माना कि तुम्हें अपने घटिया विचारों और आलसी कार्यों के कारण घटिया परिणाम मिले। तुमने अपनी असफलता का दोष देने के लिए एक बहाने की तलाश की और वह बहाना तुम्हें कितनी जल्दी मिल गया। तुमने मुझे दोष दिया। तुम रोए कि तुम्हारी सारी कमियां, तुम्हारे अवसरों की कमी, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी औसत जिंदगी, यह सब ईश्वर की इच्छा थी। तुम गलत थे। हम ठीक से लेखा जोखा कर ले। पहले तो हम तुम्हारी कमियों को गिन ले, क्योंकि मैं तब तक तुमसे नया जीवन शुरू करने के लिए नहीं कह सकता जब तक कि तुम्हारे पास इसके लिए सही औजार ना हो। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हारे देखे बिना सूर्य उगता और डूबता है? नहीं ना, आप देख सकते हैं और आपकी आंखों में मैंने जो अरबों तंतु लगाए हैं उनकी वजह से आप किसी पत्ती, बर्फ के टुकड़े, तालाब, पक्षी, बच्चे, बादल, सितारे, गुलाब या इंद्रधनुष को देख सकते हो और आंखों की प्रेम की भाषा भी देख सकते हो। इसे अपना पहला वरदान मानो। क्या तुम बहरे हो? क्या बच्चे का हंसना या रोना तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं ना, आप सुन सकते हो और आपके हर कान में मैंने जो 24,000 तंतु लगाए हैं वे आप तक पेड़ों से टकराती हवा, चट्टानों पर टकराती लहरों, ओपेरा की मधुरता, चिड़ियों की चहचहाहट, बच्चों की मस्ती पहुंचाते हैं। और ये शब्द भी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसे एक और वरदान मानो। क्या तुम गूंगे हो? क्या तुम्हारे होंठ हिलने से सिर्फ थूक निकलता है? नहीं ना, तुम बोल सकते हो जो कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। आपके शब्द क्रोधित मनुष्य को शांत कर सकते हैं, निराश आदमी को आशा दे सकते हैं, पलायनवादी को कर्म के लिए उकसा सकते हैं, दुखी को खुश कर सकते हैं, अकेले आदमी का दिल बहला सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों की प्रशंसा कर सकते हैं, पराजित लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, अज्ञानियों को सिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसे एक और वरदान मानो। क्या तुम्हें लकवा मार गया है? क्या तुम जमीन पर रेंगकर चलते हो? नहीं ना, आप अच्छी तरह से चल सकते हो। आप पेड़ नहीं हो जो किसी छोटी सी जगह पर हवा और दुनिया के थपेड़े बर्दाश्त करने के लिए स्थिर कर दिए गए हो। आप दौड़ सकते हो, नाच सकते हो, काम कर सकते हो। मैंने आपके भीतर 500 मांसपेशियों को, 200 हड्डियों को, 7 मील लंबा नर्व फाइबर इसीलिए लगाया है ताकि आप अपनी इच्छा से चल फिर सको। इसे एक और वरदान मान। क्या तुमसे कोई प्रेम नहीं करता और तुम किसी से प्रेम नहीं करते? क्या तुम दिन रात अकेलेपन में रहते हो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब आप प्रेम का रहस्य जान चुके हो। प्रेम पाने के लिए आपको पहले बिना प्रतिदिन की आशा के प्रेम देना पड़ता है। प्रेम एक ऐसा उपहार है जिसके बदले में कोई मांग नहीं होती। अब आप जान चुके हो कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करना अपने आप में पुरस्कार है और चाहे प्रेम के बदले में प्रेम ना मिले, परंतु आपका प्रेम व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आपका प्रेम आपकी तरफ वापस लौट कर आता है और आपके हृदय को नम्र करके इसे शुद्ध कर देता है। इसे एक और वरदान मानो। दोबारा गिनो। क्या तुम्हारा हृदय कमजोर है? क्या यह तुम्हारे जीवन को चलाने में समर्थ नहीं है? नहीं, आपका हृदय बहुत शक्तिशाली है। अपने सीने को छू, अपने लय को महसूस करो। दिन रात हर पल यह धड़कता रहता है। यह एक साल में 3,60,000,000 धड़कता है और चाहे आप जागो या सो, यह जीवन भर यही करता रहता है। यह 60,000 मील लंबी शिराओं, धमनियों और नसों में आपके खून को शुद्ध करता है या हर साल 6 लाख गैलन खून को पंप करता है। इंसान आज तक ऐसी मशीन नहीं बना पाया, इसे एक और वरदान मानो। क्या तुम्हें कोढ़ हो गया है? क्या लोग तुम्हें आते देखकर डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं? नहीं, आपकी त्वचा साफ है और यह अद्भुत कृति है। आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है, इस पर साबुन और तेल लगाकर इसे साफ रखना है। समय के साथ साथ मजबूत से मजबूत लोहे पर भी दाग लग जाएगा, उस पर जंग लग जाएगी, परंतु आपकी त्वचा के साथ ऐसा कभी ना होगा। आखिरकार मजबूत से मजबूत धातु भी घिस जाएगी, परंतु वह परत नहीं घिसेगी जो मैंने आपके चारों तरफ बनाई। यह अपने आप को लगातार नया करती रहेगी। पुरानी कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिकाएं आती रहेंगी, जिस तरह की आप पुराने जगह नए बन जाएंगे। इसे एक और वरदान मानो। क्या तुम्हारे फेफड़ों में कोई गड़बड़ी है? क्या जीवन भरी सांस को तुम्हारे शरीर में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? नहीं, आपने अपने चारों तरफ इतना प्रदूषण भरा माहौल बना लिया है, इसके बावजूद आपके फेफड़े आपके शरीर में आराम से ऑक्सीजन ले आते हैं। आपके फेफड़े 60 करोड़ मास की परतों तक ऑक्सीजन ले जाते हैं और अशुद्ध गैसों को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसे एक और वरदान मानो। क्या तुम्हारे खून में गड़बड़ी है? क्या इसमें पानी मिला हुआ है या पस पड़ा हुआ है? नहीं, आपके 5 क्वार्टर खून में 22 ट्रिलियन रक्त कोशिकाएं हैं और हर कोशिका में करोड़ों अणु हैं और हर अणु 1 सेकेंड में 1 करोड़ बार हिल रहा है। हर सेकेंड आपकी 20 लाख रक्त कोशिकाएं मरती हैं और 20 लाख नई कोशिकाएं जिंदा होती हैं, और यह आपके जीवन के प्रारंभ से होता आ रहा है या हमेशा आपके भीतर होता रहा है, अब यह आपके बाहर भी होगा। इसे एक और वरदान मानो। क्या तुम्हारा दिमाग कमजोर है? क्या तुम सोच नहीं सकते? नहीं ना, आपका मस्तिष्क इस सृष्टि की सबसे जटिल रचना है। मैं जानता हूं 3 पौंड के इस मस्तिष्क में 13 बिलियन नर्व सेल्स हैं। आपके मस्तिष्क में इतनी कोशिकाएं हैं कि यह संख्या धरती पर रहने वाले इंसानों से 3 गुना ज्यादा है। आपकी हर अनुभूति यहाँ पर दर्ज होती है। हर आवाज, हर स्वाद, हर गंध, हर काम, यानी बचपन से लेकर आज तक आपको जो भी अनुभव हुआ है वह सब यहाँ पर दर्ज होता है। मैंने आपकी कोशिकाओं में 1000 बिलियन प्रोटीन अणु भी लगा रखे हैं। आपके जीवन की हर घटना आपके याद करते ही आपको याद आ सकती है, और आपके शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए मैंने 40 लाख दर्द की अनुभूति देने वाली संरचनाओं को भी रखा है, 5 लाख स्पर्श सूचक लगाए हैं और 2 लाख ताप सूचक भी लगाए हैं। किसी देश का सोना भी इतनी हिफाजत से नहीं रखा जाता होगा जितनी हिफाजत से मैंने आपको रखा है। विश्व के 7 आश्चर्य भी आपसे बड़े आश्चर्य नहीं हो सकते। आप मेरी सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना हो। आप में इतनी आणविक ऊर्जा है कि आप विश्व के बड़े शहरों को नष्ट कर सकते हो और इन्हें फिर से बना सकते हो। क्या आप गरीब हो? क्या आपकी जेब में सोना या चांदी नहीं है? नहीं, आप अमीर हो। हमने अभी आपकी दौलत को गिना है। इस सूची को ध्यान से पढ़ो, वरदान को एक बार फिर से गिनो, अपनी संपत्ति का हिसाब लगाओ। आपने खुद के साथ धोखा क्यों किया? आप क्यों रोए कि आपके पास कुछ भी नहीं है? मानवता के सारे वरदान आपसे छिन नहीं चुके हैं। आप इस गलत फहमी में क्यों रहे हो कि आप अपनी जिंदगी को बदलने में सक्षम नहीं हो? क्या आप में प्रतिभा, योग्यता, सुख, अनुभूति और गर्व नहीं है? क्या आप में आशा नहीं है? आप अंधेरे कोने में अपने सिर को क्यों छुपाए हुए हो? आप क्यों दुबके हुए हो? आप क्यों हारे हुए राक्षस की तरह अफसोस कर रहे हो? आप क्यों उस डरावने नरक में जाने के लिए तैयार खड़े हो? आपके पास इतना कुछ है, आपके वरदान आपके प्याले से छलके पड़े हैं। आपको उन वरदानों को पहचानना है और आपको उन वरदानों का एहसास भी नहीं है। जिस तरह कोई पिता अपने बच्चे को लाड़ प्यार में बिगाड़ देता है, उसी तरह मैंने उदारता से और लगातार तुम्हें दिया है। मुझे जवाब दो, खुद को जवाब दो। कोई भी बूढ़ा या बीमार, कमजोर और लाचार अमीर आदमी उन वरदानों को हासिल करने के लिए अपने तिजोरी में भरा हुआ सारा पैसा लुटा देगा जिन्हें आप इतने हल्के से ले रहे हो। सुख और सफलता के इस पहले रहस्य को जानो कि आपके पास इस वक्त वह सब कुछ है जो महान गौरव हासिल करने के लिए जरूरी है। यह सब चीजें आपका खजाना है, आपके औजार हैं, जिनकी मदद से आप आज से नए और बेहतर जीवन की नींव रखेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने वरदान गिनो और जान लो कि तुम मेरी महानतम रचना हो। जीवित मृत्यु से वापस आने के लिए और विश्व का महानतम चमत्कार करने के लिए तुम्हें मेरा यह पहला नियम मानना होगा और गरीबी में सीखे हुए अनुभवों के प्रति कृतज्ञ रहना होगा। क्योंकि गरीब वो नहीं होता जिसके पास कम है, बल्कि वो होता है जिसे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और सच्ची सुरक्षा उन चीज़ों में नहीं होती जो आपके पास है, बल्कि उन चीज़ों में होती है जिनके बिना आपका काम चल सकता है। वे बाधाएं कहाँ हैं जिनकी वजह से आप असफल हुए हैं? वे केवल आपके दिमाग में निवास करती हैं। अपने वरदानों को गिनो। और दूसरे नियम भी पहले नियम की ही तरह है, अपनी दुर्लभता को साबित करो। आपने खुद को एक कुम्हार के आंगन में जीने के लिए विवश कर लिया है और आप वहीं पड़े हुए हो। आप अपनी असफलता के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते। आप अपने से नफरत करके, अपने आप को दोष दे करके, अपने आप को मिटाने दे रहे हो। आप खुद के और दूसरों के खिलाफ किए गए अपराधों को लेकर खुद से नफरत कर रहे हो और खुद को नष्ट कर रहे हो। क्या आप दुविधा में नहीं हो? क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि मैं तुम्हारी असफलताओं, तुम्हारे अपराधों और दयनीय व्यवहार को किस तरह क्षमा कर देता हूँ, जबकि तुम इनके लिए खुद को माफ भी नहीं कर पाते? मैं तुमसे ये बातें तीन कारणों से कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम भेड़ों के झुंड की एक भेड़ नहीं हो। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम औसत जीवन के सुख चारागाह में विनाश की तरफ आगे बढ़ो और तुम एक महान दुर्लभ रचना बन जाओ। रेब्रा की पेंटिंग या डेगास के कांसे की मूर्ति या स्ट्रेडिवेरियस के वॉयलिन या शेक्सपियर के नाटक के बारे में विचार करो। यह सब दो कारणों से बहुमूल्य है। उनके बनाने वाले बेहद प्रतिभाशाली थे और वे संख्या में बहुत थोड़े थे, परंतु सभी विधाओं में प्रतिभाशाली लोग एक से अधिक संख्या में रहे हैं। इस तर्क के आधार पर आप इस धरती पर रहने वाले सबसे मूल्यवान खजाने हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपको किसने बनाया है और यह भी कि आप अपनी तरह के एकमात्र इंसान हैं। 70 बिलियन लोग आज तक इस धरती के शुरू होने के समय से इस पर रह चुके हैं, परंतु पूरी तरह आप जैसा कोई भी व्यक्ति कभी नहीं हुआ, ना ही विश्व के अंत तक बिल्कुल आप जैसा कोई दूसरा व्यक्ति भविष्य में होगा। आपको अपने दुर्लभ होने का ज्ञान ही नहीं है। आपकी नजर में इसका कोई महत्व ही नहीं है। कम से कम आपने अभी तक यह साबित नहीं किया है। परंतु आप यह जान लें कि आप इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु हैं। अत्यधिक प्रेम के क्षण में आपके पिता से प्रेम के अनगिनत बीज प्रवाहित हुए थे, जो संख्या में 400 मिलियन से अधिक थे। ये सभी आपकी माँ के शरीर में तैरे और मर गए, सभी एक को छोड़कर। आप, केवल आप ही अपनी माँ के शरीर की नर्म आंच में बचे रहे और अपनी साथी को ढूंढते रहे। यानी आपकी माँ की एक कोशिका को जो इतनी छोटी थी कि एक एकॉर्न के छिलके में 20 लाख कोशिकाएं समा जाए, परंतु अत्यंत विषम और असंभव जैसी नजरें आने वाली परिस्थितियों में भी अंधेरे और विनाश के उस बृहद समुद्र में आप लगन से तैरते रहे। आपने अपनी साथी कोशिका को ढूंढ ही लिया, आप उसके साथ जुड़ गए और आपने एक नया जीवन शुरू किया, आपका जीवन। आप यहाँ आए और हर बच्चे की तरह आप भी अपने साथ मेरा यह संदेश लेकर आए कि मानवता की तरफ से मैं अभी निराश नहीं हुआ हूँ। दो कोशिकाओं से मिलकर एक चमत्कार बना, दो कोशिकाएं जिनमें से हर एक में 23 क्रोमोसोम थे और हर क्रोमोसोम में सैकड़ों जीन्स थे जिन्होंने आपके हर लक्षण को निर्धारित किया, आपकी आंखों के रंग से लेकर आपके आकर्षण तक और आपके मस्तिष्क के आकार तक सब कुछ तय कर दिया गया। आपके पिता के 40 करोड़ शुक्राणुओं से किसी भी एक शुक्राणु से और आपकी माँ और पिता के क्रोमोसोम के सैकड़ों जीन्स के द्वारा मैं 3 लाख बिलियन इंसानों की रचना कर सकता था जो सभी एक दूसरे से अलग होते, परंतु मैंने किसकी रचना की? आपकी। अपने आप में अनूठे, दुर्लभ से भी दुर्लभ एक बेशकीमती खजाना जिसमें मस्तिष्क, भाषा, गति और स्वरूप और कार्यों के वे गुण थे जो ना तो आज तक किसी में हुए, ना आज है और ना ही भविष्य में होंगे। जब आपकी कीमत किसी सम्राट के खजाने से भी ज्यादा है तो फिर आप अपने आप को सिक्कों में क्यों तौलते हैं? आपने उन लोगों की बात क्यों सुनी जिन्होंने आपको नीचा दिखाया? इससे भी बुरी बात यह कि आपने उनका विश्वास क्यों किया? मेरा कहा मानो, अपनी दुर्लभता को अंधेरे में मत छुपाओ, इसे सामने लाओ, दुनिया को दिखा दो। उस तरह चलने की कोशिश मत करो जिस तरह तुम्हारा भाई चलता है, उस तरह बोलने की कोशिश मत करो जिस तरह तुम्हारा लीडर बोलता है। औसत दर्जे के इंसानों की तरह श्रम मत करो, किसी दूसरे की तरह कोई काम मत करो, कभी नकल मत करो। वह बुरा आदमी हो, और याद रहे जो बुराई की नकल करता है वह हमेशा अपने मॉडल से भी आगे निकल जाता है, जबकि जो भलाई की नकल करता है वह हमेशा अपने मॉडल से पीछे रहता है। किसी की नकल मत करो, आप अपने जैसे ही रहो, अपनी दुर्लभता को दुनिया के सामने साबित करो, दुनिया आप पर सोने की बारिश कर देगी। यह दूसरा नियम है, अपनी दुर्लभता को साबित करें। और अब आपके पास दो नियम हो गए, अपने वरदानों को गिनो, अपनी दुर्लभता को साबित करो। आप में कोई कमी नहीं है, आप औसत नहीं हो, आप सिर हिला रहे हो, आप मुस्कुराने पर विवश हो रहे हो, आप मान रहे हो कि आपने खुद को धोखा दिया है। अब आपकी अगली शिकायत की तरफ आते हैं। अवसर कभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, मेरी बात मानो, और ऐसा होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें हर काम में सफलता का नियम बताने जा रहा हूँ। कई सदी पहले यह नियम आपके पितामहों को पहाड़ की चोटी से दिया गया था। कुछ ने नियम का पालन किया और उनके जीवन में सुख, सफलता, स्वर्ण, मन की शांति के फल मिले। ज्यादातर लोगों ने उस नियम को अनसुना कर दिया क्योंकि वे किसी चमत्कारी साधन की तलाश में थे, वे किसी टेढ़े शॉर्टकट की तलाश में थे, या फिर वे भाग्य नामक शैतान का इंतजार कर रहे थे वह आकर उन्हें जीवन में अमीर बनाए। वे व्यर्थ ही इंतजार करते रहे, जिस तरह की आप अब तक इंतजार कर रहे हो, और वे रोए जिस तरह की आप रो रहे हो, और किस्मत उन पर इसलिए मेहरबान नहीं हुई क्योंकि यह मेरी इच्छा थी। यह नियम आसान है, युवक हो या बूढ़ा, भिखारी हो या राजा, श्वेत हो या अश्वेत, पुरुष हो या महिला, सभी इस रहस्य से लाभ उठा सकते हैं। सफलता कैसे हासिल की जाए इस बारे में जितने भी नियम हैं, भाषण हैं और सिद्धांत हैं, उनमें से यही एक तरीका है जो आज तक कभी असफल नहीं हुआ। जो भी आपको अपने साथ 1 मील चलने के लिए मजबूर करे, उसके साथ 2 मील तक चले जाओ। यह तीसरा नियम है, एक ऐसा रहस्य जो आपको इतनी अमीरी और शोहरत देगा जिसकी कल्पना आपने सपने में भी कभी नहीं की है। एक और मील चलो। सफलता का एकमात्र निश्चित तरीका यही है कि आप आशा से अधिक और बेहतर सेवा प्रदान करो, चाहे आपका काम कोई भी क्यों ना हो। इतिहास गवाह है, सभी सफल लोगों में यह आदत थी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि औसत दर्जे का इंसान बनने के लिए आपको केवल उतना ही काम करना चाहिए जितना कि आपसे कहा जाए या जितना काम की आपको तनख्वाह मिलती हो। आपको जितना वेतन मिल रहा है, अगर आप उससे ज्यादा काम कर रहे हो तो यह ना सोचो कि आपके साथ धोखा हो रहा है। जीवन में एक पेंडुलम होता है और आप जितना पसीना बहाओगे, अगर उसका फल आपको आज नहीं मिला तो वह पेंडुलम कल घूमेगा और आपको 10 गुना फल आने वाले कल में मिलेगा। औसत लोग एक और मील नहीं जाते क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा करना खुद को दुख देना है। आपको अपनी तरफ से एक और मील चलने की पहल करना चाहिए। आपको इससे बचना नहीं चाहिए, आप इससे बच नहीं सकते। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे, अगर आप उतना कम काम करेंगे जितना कि और लोग करते हैं, तो आप अपनी असफलता के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप सेवा करेंगे तो आपको उसके बदले पुरस्कार मिलेगा। यह बात उसी तरह तय है कि जिस तरह की यह बात कि आप यदि सेवा नहीं करेंगे तो आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। कारण और परिणाम, साधन और लक्ष्य, बीज और फल, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। परिणाम कारण में पहले से छुपा होता है, लक्ष्य साधन में छुपा होता है और फल हमेशा बीज में छुपा होता है। एक और मील चलो। अगर आपका मालिक कृतज्ञ है तो भी चिंता ना करो, उसकी और अधिक सेवा करो। उसके बजाय आप यह मान लो कि आपका यह कर्ज मेरे नाम पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि तब आप जान जाओगे कि आपके हर मिनट, आपकी अतिरिक्त सेवा के हर कार्य का आपको पुरस्कार मिलेगा। और अगर आपको जल्दी पुरस्कार नहीं मिलता है तो भी चिंता मत करो, क्योंकि पुरस्कार जितना देर से मिलेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज इस नियम का सबसे बड़ा लाभ है। आप सफलता को आदेश नहीं दे सकते, आप सिर्फ इसके काबिल बन सकते हो। अब आप जान गए हो कि सफलता हासिल करने का महान रहस्य क्या है। एक और मील चलो। वह जगह कहाँ है जहाँ से तुम चिल्लाए थे कि कोई अवसर नहीं है? देखो, अपने चारों तरफ देखो। देखो, कल तुम आत्मदया के कचरे में किसी बौने की तरह पड़े हुए थे, अब आप सोने के गलीचे पर तन कर चल रहे हो। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ आप बदले हो, परंतु आप ही तो सब कुछ हो। आप मेरे महानतम चमत्कार हो, आप विश्व के चमत्कार हो। और अब सुख और सफलता के 3 नियम आपके पास हैं। अपने वरदानों को गिनो, अपनी दुर्लभता को साबित करो। एक और मील चलो। अपनी प्रगति को लेकर उतावले ना हो, धीरज रखो। कृतज्ञता से वरदान गिनने में, गर्व से अपनी दुर्लभता साबित करने में, एक और मील चलने में समय लगता है। यह काम पलक झपकते ही नहीं हो जाता, परंतु जो आपको बहुत अधिक मुश्किलों के बाद हासिल होता है, आप उसे लंबे समय तक संभाल कर रखते हो। याद रखो, जिन्हें दौलत विरासत में मिलती है उन्हें इसका महत्व समझ में नहीं आता, परंतु जो लोग खुद की मेहनत से दौलतमंद बनते हैं वे इसे ज्यादा संभाल कर रखते हैं और अपने नए जीवन में प्रवेश करते समय डरे नहीं। हर महान काम के साथ कुछ ना कुछ जोखिम जरूर होता है। अगर आप चाहें कि आपको एक चीज मिल जाए और दूसरी चीज से आप बच जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आप जान चुके हैं कि आप एक चमत्कार हैं और चमत्कार में कोई डर नहीं होता। गर्व करो, आप किसी लापरवाह रचयिता की क्षणिक सनक का परिणाम नहीं हो जो जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था। आप उन शक्तियों के गुलाम नहीं हो जिन्हें आप समझ नहीं सकते। आप किसी छोटी मोटी शक्ति के नहीं, बल्कि मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति हो। किसी दूसरे के प्रेम के नहीं, बल्कि मेरे प्रेम के अभिव्यक्ति हो। आपको किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। मेरे हाथ के स्पर्श को महसूस करो, मेरे शब्दों को सुनो। तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें दुनिया को फिर से बनाना है, और अगर इसमें चमत्कार की जरूरत है तो इससे हमें क्या परेशानी है। हम दोनों ही चमत्कार हैं और अब हम एक साथ हैं। मैंने उस दिन से तुम में आस्था कभी नहीं खोई जब मैंने तुम्हें एक बड़ी लहर से बुना और रेगिस्तान में तुम्हें उतार दिया। अगर तुम समय का हिसाब लगाओ तो यह 500 मिलियन साल पहले की बात थी। कई मॉडल, कई आकार प्रकारों के बाद मैं 30,000 साल पहले तुम्हारे निर्माण में पूर्णता तक पहुंचा। मैंने इसके बाद इतने सालों में तुम में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि चमत्कार को मैं किस तरह सुधार सकता था। देखने में तुम अद्भुत थे और मैं तुम्हें देखकर खुश होता था। मैंने तुम्हें यह दुनिया दी और तुम्हें यहाँ का शासक बनाया। तुम अपनी पूरी संभावना तक पहुंच सको, इसके लिए मैंने तुम पर अपना हाथ रखा और तुम्हें ऐसी शक्तियां दी जो सृष्टि में किसी दूसरे प्राणी के पास ना थी। मैंने तुम्हें सोचने की शक्ति दी, तुम्हें प्रेम करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें इच्छा करने की शक्ति दी, तुम्हें हंसने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें कल्पना करने की शक्ति दी, रचना करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें योजना बनाने की शक्ति दी, और मैंने तुम्हें बोलने की शक्ति दी, और तो और मैंने तुम्हें प्रार्थना करने की शक्ति दी। तुम पर मेरे गर्व की कोई सीमा नहीं थी। तुम मेरी सबसे बेहतरीन रचना थे, मेरा महानतम चमत्कार, एक संपूर्ण जीता जागता प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो किसी भी मौसम के हिसाब से ढल सकता था, किसी भी कठिनाई और चुनौती का सामना कर सकता था, जो मेरे हस्तक्षेप के बिना अपनी खुद की तस्वीर बना सकता था, जो केवल सहज ज्ञान से नहीं बल्कि विचार और चिंतन से किसी अनुभूति या एहसास में यह फैसला कर सकता था कि उसके लिए और सारी मानवता के लिए कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब हम सफलता और सुख के चौथे नियम पर आते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक और शक्ति दी, इतनी महान शक्ति जो मैंने अपने देवदूतों को भी नहीं दी। मैंने तुम्हें चुनने की शक्ति दी। इस उपहार से मैंने तुम्हें अपने देवदूतों से भी ऊपर स्थान दिया, क्योंकि देवदूत पाप का मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मैंने तुम्हें अपने भाग्य पर पूरा नियंत्रण दिया है। मैंने तुम्हें खुद अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना रास्ता निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है। तुम ना तो स्वर्ग के थे ना धरती के, बल्कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को बनाने के लिए स्वतंत्र थे। तुम्हारे पास यह आजादी थी कि तुम चाहो तो निकृष्ट प्राणियों की तरह पतन के मार्ग पर चलो। साथ ही तुम में आत्मा के ज्ञान की वह शक्ति थी जो तुम्हें दैवीय शक्तियों वाले ऊंचाई के मार्ग पर ले जा सकती थी। मैंने तुम्हारी महान शक्ति, चुनाव करने की शक्ति को भी कभी वापस नहीं लिया। तुमने इस प्रबल शक्ति का कैसे प्रयोग किया? अपनी तरफ देखो, जरा सोचो, अपनी जिंदगी में तुमने क्या चुना था? और उन कटु क्षणों को याद करो जब तुम घुटने टेक कर या प्रार्थना करते थे कि काश तुम्हें एक बार फिर से चुनने का मौका मिल जाए। जो गुजर गया उसे गुजर जाने दो, और अभी तो तुम यह जान लो कि सुख और सफलता का चौथा महान नियम ये है, अपनी चुनाव करने की शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल करो। नफरत करने के बजाय प्रेम का चुनाव करो, रोने के बजाय हंसने का चुनाव करो, नष्ट करने के बजाय रचने का चुनाव करो, बुराई करने के बजाय तारीफ करने का चुनाव करो, चोट पहुंचाने के बजाय मरहम लगाने का चुनाव करो, चोरी करने के बजाय देने का काम करो, काम टालने के बजाय काम करने का चुनाव करो, सड़ने के बजाय बढ़ने का चुनाव करो, श्राप देने के बजाय प्रार्थना करने का चुनाव करो, और मरने के बजाय जिंदा रहने का चुनाव करो। अब तुम जान गए होगे कि तुम्हारे दुर्भाग्य मेरी इच्छा से नहीं आए, क्योंकि सारी शक्ति तो तुम्हारे ही पास थी। जिन विचारों और कर्मों की वजह से तुम कचरे के ढेर पर पड़े हुए थे, वे सभी तुम्हारे ही थे, मेरे नहीं थे। तुम्हारी छोटी प्रकृति के मान से मेरे शक्तिशाली उपहार बहुत बड़े साबित हुए। अब तुम ऊंचे और समझदार हो गए हो, और अब इस धरती के सभी फल तुम्हें मिलना चाहिए। यह जान लो कि तुम आदमी ही नहीं हो, बल्कि महान आदमी बन सकते हो। तुम में महान चमत्कार करने की क्षमता है। तुम्हारी संभावना असीमित है। मेरी बनाई इस सृष्टि में तुम्हारे अलावा किस दूसरे प्राणी ने अग्नि को अपना गुलाम बनाया है? किसने गुरुत्वाकर्षण को जीता है? किसने आसमान को चीरा है? किसने बीमारी और महामारी और अकाल को जीता है? अपने आप को फिर कभी छोटा मत समझना। जिंदगी के बचे कुचे टुकड़ों से कभी संतुष्ट मत होना। आज के बाद कभी अपनी प्रतिभा को मत छिपाना। उस बच्चे को याद करो जो कहता है, जब मैं बड़ा बच्चा बन जाऊंगा, और उसके बाद वह बड़ा बच्चा कहता है, जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा, और जब वह बड़ा हो जाता है तब वह कहता है, जब मेरी शादी हो जाएगी। और शादी के बाद क्या होता है? इसके बाद वह विचार बदलकर यूं हो जाता है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। और फिर रिटायरमेंट आता है और वह पलट कर अपने पिछले जीवन की तरफ देखता है और पछताता है और सोचता है कि उसने कितने सारे अवसर गवा दिए। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। इस दिन का आनंद लो, आज ही, कल भी और परसों भी। तुमने दुनिया का सबसे महान चमत्कार कर दिखाया है। तुम जीवित मृत्यु से वापस लौट आए हो। अब तुम कभी आत्मदया से पीड़ित नहीं रहोगे, और हर नया दिन तुम्हारे लिए चुनौती और आनंद लेकर आएगा। तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है, परंतु पहले की तरह नहीं। तुम असफलता और निराशा, सुख और सफलता में से किसी एक का चुनाव कर सकते हो। चुनाव तुम्हारा है, चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा है। मैं पहले की तरह सिर्फ देख सकता हूँ, गर्व से या दुख से। सुख और सफलता के इन चार नियमों को याद रखना। अपने वरदानों को गिनो, अपनी दुर्लभता को साबित करो, एक और मील चलो, अपनी चुनाव की शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल करो। और हाँ, इन चारों नियमों के साथ एक और बात, इन सभी को प्रेम से करो। यह प्रेम आपके लिए हो, बाकी लोगों के लिए हो और मेरे लिए हो। अपने आंसू पोंछ डालिए, आगे हाथ बढ़ाइए, मेरा हाथ पकड़िए और सीधे खड़े हो जाइए। आप जिन कब्र के कपड़ों में बंधे हुए हैं, उनके बंधन से मैं आपको आज मुक्त करता हूँ। इस दिन मैं आपको यह प्रमाण पत्र देता हूँ कि आप दुनिया की सबसे महान चमत्कार हैं।